shariathuda.org. Zamima 7A, Kanwariya, Beva Orte aur Talak Yafta Orte, wo izdawaji bandhan jo khuda kabool karta hai. Takhleeq mein shaadi ki ibtida. ये एक मालूम हकीकत है कि पहला निकाह उस वक्त हुआ जब खालिक ने पहले इंसान यानी एक मर्द जखार के लिए एक औरत निकेबा उसकी रफाकत के लिए पैदा की। नर और मादा ये वो इस्तलाहें हैं जो खुद खालिक ने जानवरों पर इंसानों दोनों के लिए इस्तेमाल की। पैदाइश 1:27। पैदाइश के बयान के मुताबिक ये मर्द जो खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया था ने देखा कि जमीन के दूसरे मखलूकात में से किसी मादा की शपल उससे मुशाबह ना थी, कोई उसे ना भाती थी और वो रफीक चाहता था। असल इब्रानी में ये ताबीर एजेर के नेगदो आई है जिसका मतलब है एक मुनासिब मददगार। तब खुदावंद ने आदम की हाजत देखी और उसके लिए उसके बदन का मुअन्नस रूप पैदा करने का इरादा किया। आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए उसके मुआफिक एक मददगार बनाऊंगा। पैदाइश 2:18। फिर हव्वा आदम के बदन से बनाई गई। बाइबल के मुताबिक पहला इज़दवाजी बंधन।
यूं रूहों का पहला बंधन कायम हुआ, बगैर तकरीब, बगैर अहदो पैमान, बगैर गवाहों, बगैर ज़ियाफ़त, बगैर इंदराज और बगैर किसी मुकर्ररा मुजरी के। खुदा ने बस औरत को मर्द के हवाले किया और उसने यूं इजहार किया, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसका नाम औरत होगा क्योंकि ये मर्द से ली गई है। पैदाइश 2:23। इसके फौरन बाद हम पढ़ते हैं कि आदम ने हव्वा के साथ कुर्बत की। यादा पहचानना, कुर्बत करना, और वो हामला हुई। यही ताबीर पहचानना, कुर्बत करना बाद में काइन और उसकी बीवी के इत्तेहाद के साथ हमल के सियाक में दोबारा आती है। पैदाइश 4:17। बाइबल में बयान करदा तमाम अज़दवाजी बंधन बुनियादी तौर पर इसी पर मुश्तमिल हैं कि एक मर्द किसी कनवारी या बेवा को अपने लिए लेता है और उससे कुर्बत करता है, और अमूमन पहचानना या उसके पास जाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो इस बात की तस्दीक है कि बंधन वाकई हो गया। किसी भी बाइबली बयान में ये नहीं आता कि कोई मजहबी या शहरी तकरीब बंधन के लिए लाजमी थी।
खुदा की नज़र में शादी कब वक़ू पज़ीर होती है? असल सवाल ये है, खुदा किस लम्हे को शादी के वक़ूआ का लम्हा समझता है? एक बाइबली और दुरुस्त और दो इंसानी इख्तरा और बातिल।
नंबर 1, बाइबली राय। खुदा एक मर्द और औरत को उस वक्त शौहर और बीवी समझता है जब कनवारी औरत पहली बार उससे बाहमी रजामंदी से कुर्बत करती है। अगर औरत पहले किसी और मर्द के साथ रह चुकी हो तो नया बंधन सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब पहला मर्द वफात पा चुका हो।
नंबर 2, बातिल निस्बती राय। खुदा उस वक्त इत्तहाद मानता है जब जोड़ा खुद फैसला करे, यानी मर्द या औरत चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी जिंसी शरीक रखें, मगर जिस दिन वो तय करें कि अब ताल्लुक संजीदा हो गया, मसलन साथ रहने लगे, तो खुदा उन्हें एक जिस्म मान लेगा। इस सूरत में ये मखलूक है ना कि खालिक, जो तय करती है कि कब एक मर्द की रूह एक औरत की रूह के साथ जुड़ती है। इस राय की अदना सी बाइबली बुनियाद भी मौजूद नहीं।
नंबर 3, सबसे आम बातिल राय। खुदा सिर्फ उस वक्त बंधन को मोतबर समझता है जब एक तकरीब मुनाकद हो। ये राय हकीकतन दूसरी राय से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, सिवाय इसके कि इसमें एक तीसरा इंसान शामिल कर दिया जाता है, मसलन मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्री अफसर, पादरी, अस वगैरह। यहाँ भी जोड़ा माजी में मुतादिद जिंसी शर्का रख चुका हो सकता है, मगर अब फ़कत एक पेशवा के रूबरू खड़े होने से गोया खुदा दोनों रूहों को मुत्तहिद मान लेता है।
शादी की ज़ियाफ़तों में तकरीबात की अदम मौजूदगी।
नोट करें कि बाइबल 4 शादी की ज़ियाफ़तों का ज़िक्र करती है, लेकिन किसी भी बयान में बंधन की तौसीक़ या बरकत के लिए किसी तकरीब का ज़िक्र नहीं मिलता। ना ये तालीम दी गई कि कोई रस्म या बैरूनी अमल बंधन के खुदा के सामने मोतबर होने के लिए ज़रूरी है। पैदाइश 29:21-28, कज़ा 14:10-20, استر 2:18 یوحنا 2:1-11 بندھن کی تصدیق اس وقت ہوتی ہے جب ایک کنواری عورت اپنے پہلے مرد کے ساتھ باہمی رضامندی سے قربت کرتی ہے، یعنی تکمیل نکاح۔ یہ تصور کہ خدا صرف اسی وقت جوڑے کو متحد کرتا ہے جب وہ کسی مذہبی پیشوا یا مجسٹریٹ کے روبرو کھڑے ہوں، صحیفوں کی تائید سے خالی ہے۔
زنا اور شریعت خدا۔ ابتدا سے خدا نے زنا سے منع کیا، یعنی عورت کا ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک عورت کی روح ایک وقت میں فقط ایک مرد کے ساتھ جڑ سکتی ہے۔ عورت اپنی زندگی میں کتنے ہی مردوں کے ساتھ بندھن میں آئے، اس پر کوئی حد مقرر نہیں، مگر ہر نیا تعلق صرف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب پچھلا تعلق موت سے ختم ہو چکا ہو، کیونکہ تب ہی مرد کی روح اس خدا کے پاس لوٹتی ہے جس سے وہ آئی تھی۔ واز 12:7۔ دوسرے لفظوں میں، دوسرے مرد سے بندھن کے لیے اسے بیوہ ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت صحیفوں میں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جب بادشاہ داؤد نے نبال کی موت کی خبر سنی تو تب ہی ابیجیل کو بلا لیا۔ اول سموئیل 25:39-40۔ بوعز نے روت کو اسی لیے بیوی بنایا کہ وہ جانتا تھا اس کا خاوند محلون مر چکا تھا۔ روت 4:13۔ اور جب یہوداہ نے اپنے دوسرے بیٹے اونان کو کہا کہ تامار سے نکاح کرے تاکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے نام پر نسل قائم کرے۔ پیدائش 28:8۔ مزید دیکھیے متی 5:32، رومیوں 7:3۔
مرد اور عورت زنا میں فرق۔ صحیفوں میں واضح طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے خلاف زنا جیسی کوئی چیز نہیں، بلکہ زنا مرد کے خلاف ہوتا ہے۔ بہت سی کلیسیائیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ اگر ایک مرد کسی عورت سے جدا ہو کر ایک اور کنواری یا بیوہ سے شادی کرے تو وہ اپنی سابقہ بیوی کے خلاف زنا کرتا ہے، مگر بائبل اس کی تائید نہیں کرتی۔ یہ فقط سماجی رواج ہے۔
اس کی دلیل خدا کے بہت سے خادموں کی مثالوں میں ملتی ہے جنہوں نے کنواریوں اور بیوگان سے متعدد شادیاں کیں اور خدا نے ان پر نکیر نہ کی، جن میں یعقوب بھی شامل ہے جس کی 4 بیویاں تھیں اور انہی سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل اور خود مسیح آئے۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ یعقوب نے ہر نئی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔
ایک اور معروف مثال داؤد کا زنا ہے۔ ناتن نبی نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے کسی عورت کے خلاف زنا کیا جب اس نے بتشبا کے ساتھ تعلق رکھا، 2 سموئیل 12:9، بلکہ یہ کہ اس نے اس کے شوہر اوریا کے خلاف زنا کیا۔ یاد رہے کہ داؤد پہلے ہی میکل، ابیجیل اور اخینوام سے شادی کر چکا تھا، 1 سموئیل 25:42۔ یعنی زنا ہمیشہ مرد کے خلاف گناہ کہلاتا ہے، عورت کے خلاف نہیں۔
بعض پیشوا کہتے ہیں کہ خدا ہر بات میں مرد و زن کو یکساں ٹھہراتا ہے، مگر یہ ان 4000 برس کے بائبلی ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بائبل میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں جہاں خدا نے کسی مرد کو اپنی بیوی کے خلاف زنا کرنے پر ملامت کی ہو۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد زنا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ خدا مرد اور عورت کے زنا کو مختلف طور پر سمجھتا ہے۔ بائبلی سزا دونوں کے لیے ایک تھی، لاویوں 20:10، استثناء 22:22-24، مگر مرد کی کنوارگی اور شادی کے درمیان کوئی ربط نہیں، فیصلہ عورت کرتی ہے مرد نہیں۔ بائبل کے مطابق مرد اس وقت زنا کرتا ہے جب وہ ایسی عورت سے تعلق رکھتا ہے جو نہ کنواری ہو اور نہ بیوہ۔ مثال کے طور پر، اگر 25 سالہ کنوارا مرد ایک 23 سالہ لڑکی سے ہم بستر ہو جو پہلے کسی اور مرد کے ساتھ رہ چکی ہے، تو وہ زنا کرتا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک وہ لڑکی اس دوسرے مرد کی بیوی ہے۔ متی 5:32، رومیوں 7:3، گنتی 5:12۔
لیویریت، شادی اور نسل کی حفاظت۔ یہ اصول کہ عورت نئے مرد کے ساتھ فقط پہلے مرد کی موت کے بعد بندھن قائم کر سکتی ہے، خدا کے دیے ہوئے لیویریٹ نکاح کے قانون سے بھی ثابت ہے، جس کا مقصد خاندانی میراث کی حفاظت تھا۔
अगर भाई इकट्ठे रहते हों और उनमें से एक बेऔलाद मर जाए तो उसकी बेवा खानदान से बाहर किसी अजनबी से निकाह ना करे। उसका देवर उसके पास जाए, उसे बीवी बना ले और देवर का फर्ज अदा करे। इस्तस्ना 25:5-10। नीज देखिए, पैदाइश 28:8, रूथ 1:12-13, मत्ती 22:24। तवज्जो रहे कि ये कानून उस वक्त भी पूरा होना था अगर देवर के पास पहले ही एक और बीवी मौजूद हो। बुआस के मामले में तो उसने पहले रूथ को एक और ज्यादा कराबत रखने वाले शख्स को पेश किया, मगर उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक और बीवी लेकर अपनी मीरास बांटना नहीं चाहता था। जिस दिन तू नौमी के हाथ से खेत खरीदेगा उसी दिन तू रूथ मुआबिया को भी हासिल करेगा जो मरने वाले की बीवी थी, ताकि मरने वाले के नाम को उसकी मीरास पर कायम रखे। रूथ 4:5। शादी का बाइबली नुक्ते नज़र। जैसा कि सहीफ़ों में पेश किया गया है, शादी का बाइबली तसव्वुर साफ और मौजूदा इंसानी रवायात से मुख्तलिफ है। खुदा ने शादी को एक रूहानी बंधन ठहराया जो एक मर्द और किसी कनवारी या बेवा के दरमियान तकमील निकाह से मोहरबंद होता है, और इसके लिए किसी तकरीब, मुजर्री या बेरूनी रस्म की ज़रूरत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि बाइबल शादियों का हिस्सा के तौर पर तकरीबात को मना करती है, बल्कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि ना वो लाजमी है और ना ही इस बात की तस्दीक कि खुदा की शरीयत के मुताबिक रूहों का इत्तेहाद वाक़े हो चुका है। खुदा की नज़र में इत्तेहाद उसी लम्हे मोतबर होता है जब बाहमी रजामंदी से कुर्बत होती है, और ये इसी इलाही तरतीब की अक्कासी है कि औरत एक वक्त में फ़कत एक ही मर्द के साथ जुड़ी होती है, यहाँ तक कि मौत उस बंधन को तोड़ दे। बाइबल में शादी की ज़ियाफ़तों में तकरीबात की अदम मौजूदगी इस अमर पर ज़ोर देती है कि असल तवज्जो उस दाखिली अहद पर और नस्ल के तसलसल के इलाही मकसद पर है, ना कि इंसानी रसूमात पर। नतीजा, इन तमाम बाइबली बयानात और उसूलों की रोशनी में वाज़े होता है कि शादी की खुदा की तारीफ़ इंसानी रवायात या कानूनी कार्रवाइयों में नहीं बल्कि उसके अपने डिज़ाइन में मुज़मर है। खालिक ने इब्तदा ही से मयार मुकर्रर कर दिया। खुदा की नज़र में शादी उस वक्त मोहरबंद होती है जब एक मर्द बाहमी रजामंदी से उस औरत के साथ कुर्बत करे जो निकाह की अहल हो, यानी कनवारी या बेवा हो। शहरी या मजहबी तकरीबात अवामी ऐलान की हैसियत रख सकती हैं, मगर इस बात के फ़ैसला कुन मयार नहीं कि खुदा के सामने बंधन मोतबर है या नहीं। असल अहमियत उसके हुक्म की अताअत, इज़दवाजी बंधन की हुर्मत का एहतराम और उसके अहकाम की वफादाराना पैरवी को है, जो सकाफती तब्दीलियों या इंसानी आरा के बावजूद गैर मुतगैर रहते हैं। ये सिलसिला और शरीयत खुदा पर बहुत से दीगर मुताले इस वेबसाइट पर मिल सकते हैं, शरीयतखुदा.org।